تو اس لیے اس کی تعلیم, اس کا کرکٹ کا کیریئر اور اس کا جو انفلوئنس ہے پوری
انٹرنیشنل انفلوئنس,
میں سمجھتا ہوں ہی واز دا بیسٹ چوائس. تو اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھی اگر نواز شریف آ جائے یا عمران آ جائے یا کوئی تیسری پارٹی آ جائے, انہیں یہ طے کرنا کہ تیار اگر آپ پاکستان سے مخلص ہیں تو پھر لیٹ ہم رن, کہ وہ اچھا کام کر رہا تھا, آپ فائنل میں پہنچے تھے اس کے دور میں.
بالکل بالکل,
اب کیا
انڈیا کو ہرایا تھا,
انڈیا کو ہرایا تھا, دس ہفتوں سے ہرایا تھا, آپ نے فائنل کھیلا تھا, اب آپ نے کیا کیا, آپ ورلڈ کپ میں ون ڈے میں بری طریقے سے باہر ہوئے, ٹی ٹوینٹی میں بھی باہر ہوئے, باقی سارے دیکھ لیں آپ جتنے بھی ایونٹس ہیں آپ بری طریقے سے مار کھا رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے آگے نظر آ رہا ہے. اور یہ تو بھی شارٹ ٹرم بات کریں, لانگ ٹرم آپ کو اور زیادہ افیکٹ کر سکتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی ان لوگوں سے پیچھا چھڑا لیا جائے اتنا اچھا ہے.
بہت شکریہ کیسر بھائی آپ کا, اور مجھے نہ آنے اس پہ کامنٹ دے دیں, یہ نہ آنے والے پہ کیا آپ دیکھتے ہیں ابھی چیمپئنز ٹرافی پہ اگر انڈیا
نہیں آئے گا, مجھے نہیں لگ رہا
آپ کو کیا
کہہ دیا.
دیکھیے بات یہ کہ مطلب ہم یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں, بہت سے ہمارے دوست انڈینز ہیں, سب ساتھ کام کرتے ہیں, ان کو بھی دکھ ہوگا اگر انڈیا نہیں جاتا, لیکن سب کرکٹ لورز ہیں, ہم لوگ یہاں بڑے آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں, سب کچھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی اپروچ نہیں ہے. اگر انڈیا ایسا کرتا ہے اور یہ کرکٹ کی اسپرٹ کے خلاف ہے, پاکستان وہاں کھیل کر آیا ہے, پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ آپ کی دنیا کی ٹاپ کی ٹیمیں یہاں کھیل رہی ہیں, آسٹریلیا, نیوزی
لینڈ, جو کہہ رہا ہے ہمیں سیکورٹی ایشو ہے, کوئی سیکورٹی ایشو
نہیں, سیکورٹی ایشو نہیں ہے,
کوئی سیکورٹی ایشو,
لیکن اس پہ میں سمجھتا ہوں اگر انڈیا اس دفعہ نہیں آتا تو پھر پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی انڈیا کے بغیر کروانی چاہیے,
کروانی چاہیے, اور ہائبرڈ
کب تک چلے گا.
بالکل نہیں کہہ رہے ہیں نا کہ دبئی میں یا شرکا میں کرا لو, میرے خیال میں پاکستان کو اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے کہ نہیں کرائیں گے ہائبرڈ سسٹم, نہیں کرائیں گے.
آپ کو فائنینشیل نقصان ہوتا تو ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن بات یہ کہ جو بات وہ کر رہے ہیں وہ لاجیکل نہیں ہے. جو کرکٹ لورز ہیں, میں نے وہی بات کی ہے کہ وہ انڈیا کے کرکٹ انڈیا سے ہیں, پاکستان سے, سب کو دکھ ہوگا اس چیز کا کہ یار پاکستان انڈیا کے میچز کھیلنے کو نہیں ملیں گے, لیکن ہم لوگ یہاں پہ ہیں, آپس میں ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں, سب کچھ چلتا ہے کہ اچھا ان کی ٹیم جیت گئی, میں ہمیشہ کہتا ہوں جو اچھا کھیلا وہ جیتا ہے, ہم ان کو کنگریچولیٹ بھی کرتے ہیں, تو وہ سب کو بھی دکھ ہوگا, ایسا نہیں کہ جو وہاں پہ ان کے انڈیا کے لوگ ہیں. تو اس لیے جو بھی حکومتیں, ان کو یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ یار اب اگر پاکستان اگر کھیل گیا ہے تو آپ کے پاس جواز نہیں ہے.
مودی جی, مودی جی
دنیا کی جو بڑی, آسٹریلیا سے زیادہ دیکھیں نا کون سی ٹیم ہوگی,
نیوزیلینڈ آ رہی ہے, سارے آ رہے ہیں,
سب کون سا نہیں کھیل کے گیا, ویسٹ انڈیز کھیل گیا آپ کا, نارتھ افریقہ کھیل گیا, کس کو نہیں, کون نہیں کھیل رہا ہے,
سب کھیل.
تو اگر اب یہ ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کرکٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, تو اس میں پاکستان کو کہیے ٹھیک ہے اگر آپ نہیں آ رہے ہم بھی کسی ایونٹ میں آئندہ شرکت نہیں کریں گے وہاں پر,
اور کوئی ہائبرڈ سسٹم
ہم اس کو ایسے ہی کروائیں. دیٹس اٹ.
چلیں جی, بہت شکریہ کیسر بھائی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کا, اور اچھا لگا آپ آئے ہمارے ساتھ جڑے, اور آپ کے کامنٹس, لوگوں کی کالز بھی آ رہی تھیں, لیکن ظاہر ٹائم اب ہمارا نیوز کا ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ پھر کبھی کالز جو ہیں وہ لے لیں گے
انشاءاللہ. جی بہت شکریہ, مطلب میرے لیے تو یہ انایکسپیکٹڈ تھا, مقصد تو ملاقات تھا, لیکن چلے آپ نے سننے والوں سے بھی ملاقات کروا دی.
تھینک یو,
بڑا پارٹ ہے 770 کا ہمارے ساتھ, ہمیشہ رہتے ہیں,
کیوں نہیں,
تو بہت شکریہ آپ کا,
تھینک یو سو مچ,
تھینک یو, بہت شکریہ. اور شازیہ جی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں جناب, کہیں نہیں جا رہی, ان کی خبروں جو ہیں وہ پریشر کوکر ان کا سیٹی بجا رہا ہے, ان کی خبریں جو ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں, تو جلدی سے ایک ٹاپ آف دی آور کا بریک لے لیتے ہیں کیونکہ ٹائم آج ان کے پاس ہے, کہ اس کے بعد آپ کو پتا ہے بھولی بسری یادیں ہمارے ساتھ لیاقت ملک پیش کریں گے, تو ٹاپ آف دی آور کا بریک لیتے ہیں اور پھر گرما گرم خبریں آپ کے لیے شازیہ ملک صاحب لے کر آئیں گے.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM Youngstown Toronto.
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੜਕਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਨਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰਿਣਾਮ ਸਰੂਪ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ. ਸਾਰੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ $2.6 million ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਡਰਾਈਵੇ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ $19.6 million ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜਿਟ ਕਰੋ brampton.ca/engage.
ٹرکنگ والے ویرو دھیان نال سنو, ٹرک جدہ دا بھی چلاونے ہو مینوئل جا آٹومیٹک, کوئک ٹرک لیوب چیتے آہی نہ رکھیو, ٹرک دی بڑیا سروس لئی کوئک ٹرک لیوب لو جی, تیجی لوکیشن بھی کھولتی ہے, ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی, آہو جی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں, ڈرائیو تھرو فیسلٹی, ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی, کوئک ٹرک لیوب دا ون سٹاپ شاپ, 519-622-0660 یا کوئک ٹرک لیوب .com QTL بیکاز وی کیئر.
آپ کے ذہن میں کچھ کرکٹ چل رہا ہے, دنیا کے بہترین کھلاڑی آ رہے ہیں آپ کے شہر برمپٹن میں, बाबर आजम, डेविड वार्नर, क्रिस लीन, शाहीन अफरीदी, शकीबुल हसन और मजीद सुपरस्टार को देखिए एक्शन में जुलाई 25 से 11 अगस्त तक टीडी क्रिकेट अरीना ब्रैम्पटन में। बुक योर टिकट्स नाउ एट tickets.gt20.ca एंड डू नॉट मिस आउट नॉर्थ अमेरिका'स बिगेस्ट क्रिकेट इवेंट।
10 दिन हो गए तेन स्नेहा लाई नू पर तू इग्नोर ही कर रहे हैं। फोन फोन इग्नोर हो जूगा, गोलियां इग्नोर नहीं होनी। आपका आप परिवार का ध्यान रखी, फिर ना कहीं भी दस्या नहीं।
जस्टिन ट्रूडो दियां सॉफ्ट ऑन क्राइम पॉलिसीज़ की वजह नाल एक्सटॉर्शन राइज़ ते है। लिबरल्स ने एक्सटॉर्शन ते पेनल्टीज भी घटा दितियां हन। इस दौरान पियर पॉलियर एक्सटॉर्शन दे अगेंस्ट बिल लेके आए सन अते जस्टिन ट्रूडो ते जगमीत सिंह ने इस दे खिलाफ वोट कीती। हुन सिर्फ कॉमन सेंस कंजरवेटिव ही कैनेडा का माहौल ठीक कर सकते ने। ब्रॉट यू बाय पियर पॉलियर एंड कैनेडाज कंजरवेटिव।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਲ ਸਟੇਟ ਐਜੈਕਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮੁਦੱਸਰ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ$1,775 ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਰਾਜਾ ਮੁਦੱਸਰ ਨੂੰ 6472903773 ਯਾਨੀ 6472903773।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गार्लिक की सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
770 AM ਦੀ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਬਾ ਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਈ ਆਵਾਜ਼ .com ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ 6478724900।
ਚਾਂਦਨੀ
ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ,
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਚੋਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, sound system innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience, corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Sare package ka naam Chandni Banquet Hall. Aaj hi call kijiye 437-218-8734. chandnihalls.ca. Chandni.
वेलकम बैक तमाम सामाइन को जो हमें 770 AM डायल पर सुन रहे हैं और ई आवाज टीवी पर देख रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और शाजिया मलिक साहबा खबरें लेकर हमारे साथ शामिल हो गई हैं। वेलकम बैक शाजिया जी, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं?
हेलो जी, वालेकुम, वेलकम बैक।
वेलकम बैक दोबारा से एक बार,
वालेकुम, वेलकम,
वेलकम बैक। तो आपकी वो सीटी बच गई है,
सीटी बच गई है, बस हम चलेंगे। टाइम बहुत ही हमारे पास कम है आज, तो इसलिए हम फटाफट जो है
खबरें सुनाइए,
खबरें सुनाते हैं। अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय पायल ज्वेलर्स और इनकी जो है ग्रैंड ओपनिंग के बाद अब ये कहते हैं जी बड़े जबरदस्त किस्म के पास हमारे पास ज्वेलरी है, आप आ जाए हमारे पास 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 के ऊपर ये हैं ब्रैम्पटन में। तो अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनको कॉल कर लें 9057907879। और जनाब जो है आपको अगर तो दांतों के कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप जा सकते हैं डॉक्टर फियाज कुरेशी के पास, हर तरह की डेंटिस्ट्री की सर्विसेज आपको देते हैं। डॉक्टर फियाज के 3 क्लिनिक्स हैं, 2 मिसिसागा, 1 स्कार्बरो में। मिसिसागा में अगर आपको जाना है तो आप कॉल कर लें इनको 9052325678 पे, और स्कार्बरो में अगर आपको जाना है तो आप 4167579999 पे जा सकते हैं। और जनाब उसके अलावा आपको अगर अच्छी जो है कवरेज चाहिए, इंश्योरेंस अच्छी चाहिए घर और ऑटो की, तो वन एंड ओनली राजा बादशाह जी को कॉल करें। राजा बादशाह जी आपको बहुत जबरदस्त किस्म के रेट्स जो हैं वो देते हैं। इनका नंबर है 6472903773 और ये ऑल स्टेट के साथ हैं और आपको बहुत सारे पैसे बचा के देंगे। आप जाएं राजा बादशाह जी के पास। ओके जनाब, हम आपको खबरें शुरू करते हैं। आपको पहली तो हम खबर सुना दें टूडो साहब के बारे में। आपको पता ही है कि अब ये 13 जो प्रीमियर्स थे ये जमा हुए हुए थे बहुत दिनों से यहां पे कनाडा के अंदर, और ये कह रहे थे कि प्रोविंशियल और टेरिटोरियल जो है ज्यूरिसडिक्शन उसके अंदर बहुत ज्यादा फेडरल गवर्नमेंट का अब जो है वो दखल अंदाजी आने लगी है। इसके ऊपर आज टूडो साहब ने जो है पुश बैक किया है इनको, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल इन्फ्रिंज नहीं कर रहा हूं प्रोविंशियल या टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को। टूडो साहब ने कहा जी कि ये जो है ये सारे का सारा समर जो है जिसमें कि आपने मेरे पे अटैक किया है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इन्होंने कहा जी कि ये हैलिफैक्स के अंदर ये जो आपके डिस्कस कर रहे थे आप चैलेंजेस, तो फ्रेंड्स जो है वो हमेशा कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसे आपको देने के लिए ताकि आप लोग कैनेडियंस की लाइव्स जो हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। हम इन्फ्रिंज नहीं करते हैं आपकी ज्यूरिसडिक्शन को, हम तो पैसे देते हैं। जैसे कि अभी कल भी ये ट्रोनो के अंदर आए हुए थे और इन्होंने 30 मिलियन जो है वो ट्रांजिट के लिए अनाउंस किया फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। उन्होंने कहा जी हम तो इस तरह पैसे देते हैं। इन्होंने कहा जी कि जो ये मैं इन सबको कहता हूं प्रीमियर्स को कि ये जो हमने नए इनिशिएटिव्स फेडरल गवर्नमेंट ने लिए हैं इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा ना करें, इसके अंदर रिलक्टेंस शो ना करें, बल्कि हमारे साथ हिस्सा लें ताकि हम लोगों की लाइफ जो है बेहतर बना सकें और फेडरल गवर्नमेंट को आप अपना पार्टनर समझें। उन्होंने कहा जी कि इंटर गवर्नमेंटल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं डोमिनिक लिब्लों वो बिल्कुल रेडी हैं हर किसी से मिलने के लिए, इंक्लूडिंग जो है प्रीमियर फोर्ड और भी बाकी जो भी कोई उनसे मिलना चाहता है। आपके जो जो मसले और चैलेंजेस हैं आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि आप कोऑपरेट करें फेडरलिज्म जो है, क्योंकि ये कनाडा में हमारी गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है, और एंड वी आर ऑल्सो प्लीज टू हियर काउंसिल ऑफ फेडरेशन के वो भी ये सोचती है कि फेडरल गवर्नमेंट का बड़ा पॉजिटिव रोल है यहां पे लोगों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो आज एक्चुअली ट्रूडो साहब ने पुश बैक किए हैं इनके क्लेम्स कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आज ग्लोब एंड मेल की स्टोरी जो है उसने आज काफी चर्चा बनाए रखी कनाडा के अंदर, और ग्लोब एंड मेल की जो स्टोरी है वो ये है कि ट्रूडो साहब आजकल मुलाकातें कर रहे हैं मार्क कार्नी के साथ और उनको कह रहे हैं कि भाई आप जो है गवर्नमेंट को ज्वाइन करें। आपको बताइए कि मार्क कार्नी जो है फॉर्मर बैंक ऑफ कनाडा एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी ये गवर्नर रह चुके हुए हैं, और अभी तक इनको कोई स्पेसिफिक कैबिनेट पोजीशन इसलिए नहीं दी जा सकती है क्योंकि इनको जीत के एक सीट आनी पड़ेगी हाउस ऑफ कॉमन्स में जो इस वक्त इनके पास नहीं है। इसके ऊपर बात करते हुए ट्रूडो साहब ने कहा था कि ये कोई भी बाय इलेक्शन जो है वो जीत के इसमें आ सकते हैं या कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर जो नेक्स्ट ईयर है उसके अंदर फाइट करके ये गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए वाशिंगटन में लास्ट वीक ट्रूडो साहब ने कहा था कि मैं उनसे मार्क कार्नी जो है उनसे बड़े अरसे से बात कर रहा हूं क्योंकि आउटस्टैंडिंग जो एडिशन हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर होनी चाहिए और बहुत अच्छे बंदे हैं तो अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहिए। इसी सिलसिले में फाइनेंस मिनिस्टर जो क्रिस्टिया फ्रीलैंड है उनसे भी फिर पूछा कि ट्रूडो साहब आजकल मुलाकातें कर रहे हैं मार्क कार्नी से तो क्या आपकी पोजीशन तो एंडेंजर्ड नहीं है। उन्होंने कहा जी जहां तक मेरा सवाल है मैं उनके साथ खड़ी हुई हूं प्राइम मिनिस्टर के साथ, और इस तमाम बातों के तो सवाल के जी कैबिनेट में कौन होएगा ट्रूडो साहब ही देंगे, लेकिन मेरी कार्नी साहब के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है क्योंकि हम दोनों नॉर्थ अल्बर्टा से हैं, जो एडमिंटन का स्कूल था वहां पे भी हम दोनों हाई स्कूल में इकट्ठे गए थे और मैं उनको बड़े अरसे से जानती हूं, मैं अक्सर उनसे बात करती हूं। इसके अलावा जो ट्रूडो साहब की जो एक स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है जी कि ट्रूडो साहब का फुल कॉन्फिडेंस है जो है क्रिस्टिया फ्रीलैंड के अंदर एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, और उनकी जो जॉब है वो बिल्कुल सिक्योर है अकॉर्डिंग टू द ग्लोब एंड मेल स्टोरी ऑल्सो। तो अब मार्क कार्नी साहब को किस लिए बुलाया जा सका क्योंकि जाहिर है कि वो तो इकोनॉमी के ऊपर ही काम कर सकेंगे, तो अब आने वाले दिनों में अब पता चलेगा अनफोल्ड होंगी चीजें कि वो क्या कर सकते हैं। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मेलानी जोली साहबा जो हैं वो अब कल फ्राइडे के दिन चाइना को जा रही हैं क्योंकि उनको इन्वाइट किया है बीजिंग ने, और आपको पता ही है कि दोनों कंट्रीज के बीच में 2018 से तालुकात जो है वो काफी खराब थे जब ये दो माइकल्स जो थे हमारे माइकल कॉवरिक और माइकल स्पैवर इसको चाइना ने डिटेन किया था और फिर उसके बाद यूएसए ने और कनाडा ने और बहुत सारे कंट्रीज ने फिर इनको कहा था कि आप जो है इनको छोड़ें, लेकिन उसके साथ साथ ये हुआ था कि अमेरिका के कहने पे इन्होंने डिटेन किया था हवावी की जो एग्जीक्यूटिव थी मेंग वांजाओ, उसके ऊपर भी चाइना जो था बहुत भड़का हुआ था। अलबत्ता जब इसको इन्होंने छोड़ा और इसका केस जो है यहां से खत्म हुआ कनाडा से और ये वापस गई तो फिर चाइना ने ये जो दो माइकल्स थे उनको भी छोड़ा, सितंबर 2021 को ये वापस आए। तो अब जो मेलानी जोली साहिबा हैं वो चाइना जाके ये जो हमारी जो कुछ भी कनाडा और की एंगेजमेंट्स हैं उनको आगे और जो इनके प्रायोरिटीज हैं उनको जरा बढ़ाना चाहती हैं। हालांकि अभी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने कुछ दिन पहले ही मेलानी जोली साहबा को कहा था कि चाइना की जो इंटरफेरेंस है वो ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक थ्रेट है कनाडा को, और उन्होंने कहा था कि बीजिंग जो है ये बिल्कुल जो है हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है। जाहिर है कि चाइना ने इसको रिजेक्ट किया था सारे के सारा को। अब कनाडा के अंदर भी जो बिजनेसमैन है वो फेडरल गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि भई आप एक हाई लेवल डायलॉग चाइना के साथ करें और बिजनेसेस जो हैं उनको खोलें। हाँ, आप वहां पे जाके ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स वगैरह सबके बारे में बात करें, लेकिन ट्रेड को तो बूस्ट करें, ट्रेड तो चलाएं दोनों कंट्रीज के बीच में। तो उसी सिलसिले में अब मेलानी जोली साहिबा जो हैं वो वहां पे जा रही हैं। मॉन्ट्रियल पुलिस जो है जी वो अब इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि जो हमारे फेडरल इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मार्क मिलर, उनका जो ऑफिस है मॉन्ट्रियल का उसको वेंडलाइज किया गया है, और उनका जो है शीशे वीशा भी कुछ वहां पे तोड़े गए हैं। तो इन्होंने जो है मॉन्ट्रियल पुलिस ने कहा कि हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मार्क मिलर साहब ने कहा कि ये क्रिमिनल एक्ट है और मैं इसको कंडेम करता हूं। वैसे तो मेरी टीम और मेरा स्टाफ जो है अनहार्म्ड है, और 911 की हमने फौरन कॉल की थी और यहां पे बुलाया था। मिलर साहब का जो ऑफिस है ऑन सेंट याक स्ट्रीट इन मॉन्ट्रियल सन क्वेस्ट बरो के अंदर, और वो कह रहे हैं जी कि बहुत महीनों से मेरा जो राइडिंग ऑफिस था वो अंडर डेली थ्रेट था, और हर किसी को ये राइट है कि वो प्रोटेस्ट कर सकता है, अपना ओपिनियन दे सकता है, लेकिन दूसरे का की बात सुनने का भी हौसला होना चाहिए। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप दूसरों के ऑफिस को जाके आप वेंडलाइज करें और लोगों की लाइफ को एंडेंजर करें। मॉन्ट्रियल पुलिस ने कहा है कि हमको लग रहा है कि ये जो लिंक है ये इसराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका लिंक है, लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो फोरेंसिक्स और बाकी चीजों के एनालिसिस जो हैं उनका वेट कर रहे हैं। ये जो प्रेमिसेस था इनका, इसको स्प्रे पेंट किया गया था, खिड़की तोड़ी गई थी, ग्रेफिटी की थी, और काफी जो है डैमेज किया था इनसाइड, तो वो अब इन्वेस्टिगेटर्स उसको भी असेस कर रहे हैं। अभी तक कोई अरेस्ट नहीं किए हैं, लेकिन पुलिस कहती है कि जो है हम अब पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये जो है ये क्या इसमें चक्कर है, लेकिन पॉसिबली और भी कोई एमपीज जो हैं उनको भी खतरा हो सकता है, जो है वो तो थोड़ा एहतियात करने की जरूरत है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। इसके ऊपर बात करते हुए फॉर्मर पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर मार्को मेंडिचिनो जो हैं वो अब बड़े भड़के हैं, और उन्होंने कहा जी कि एक प्रोटेक्टिव जोन बनाने की जरूरत है जहां पे कि ये तमाम के तमाम पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफिस हैं, ताकि जो एमपीज और उनके स्टाफ हैं उनको ये जो राइजिंग थ्रेटनिंग बिहेवियर है उससे बचाया जा सके। वो कहते हैं कि कोई भी आके इंटिमिडेट करता है और हरास करता है, लेकिन इस बफर जोन के अंदर कोई भी 50-100 मीटर्स के अंदर नहीं आ सकेगा, और अगर आएगा तो उसको हार्श क्रिमिनल पेनल्टीज या के इंक्लूडिंग जेल जो टर्म है वो भी दी जा सकेगी। तो ये बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा जी कि अभी जो फॉरन इंटरफेरेंस बिल पास किया है उसी के अंदर जो है ये सब चीजें इनकॉर्पोरेट की जा सकती है। उन्होंने कहा जी कि फेडरल सिक्योरिटी जो है वो बड़ी सीरियस है, पोलिटिकल वायलेंस जो है वो सिर्फ यहां पर नहीं सारी दुनिया में हो रही है, और हमको अपनी कम्युनिटीज को बचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा जी लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, लेकिन लोगों को इंटिमिडेट थ्रेट करना हरेस करना ऑनलाइन भी और कम्युनिटी में जाके भी ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि उनको खुद को भी बहुत सारे डेथ थ्रेट्स मिले थे, उनकी फैमिली को भी मिले थे, और अभी एक आदमी ने तो एक एमपी के ऊपर जो है ओडवा में थूका भी है। तो ये चीजें जो हैं ये जो राइजिंग हेट्रेड और हरेसमेंट और थ्रेट्स हैं ये बड़े खतरनाक हैं। कनाडा जो है वो अब जो देख रहा है बड़े गौर से, ये जो क्रॉस बॉर्डर डॉग्स को ले जाने की बात अमेरिका ने की है, जो कि दैट विल बी इन इफेक्ट ऑन August 1st, उसके ऊपर जो कनाडा के हेल्थ मिनिस्टर हैं मार्क हॉलैंड वो ज्यादा खुश नहीं है, और उन्होंने इस पॉलिसी को अमेरिका की को बहुत ज्यादा स्लैम किया है। आज मीडिया के साथ वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि यूएस जो है उसने इसको प्रॉपरली सोचा नहीं है और कनाडा बड़ा सरप्राइज है, और ये जो यूएस की ये जो न्यू लॉज की जो न्यूज है इससे बड़ा ब्लाइंड साइडेड फील कर रहा है, क्योंकि यूएस ने अभी लॉ किया है कि जो भी कोई कुत्ते जो है वो जो डॉग्स कोई लेके एंटर हो रहा है यूएस के अंदर तो उसको एटलीस्ट 6 months ओल्ड होना चाहिए, और उसको जो हमारी अमेरिका की रेबीज वैक्सीन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी उनको पूरा होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन्होंने कहा जी कि ये इससे पहले तो हम क्रॉस बॉर्डर अपने कुत्ते वगैरह ले जाते थे, इतने तो क्वेश्चन हमसे कभी भी नहीं किए गए, क्योंकि जो कैनेडा है वो सोर्स कंट्री फॉर रेबीज नहीं है, हम रेबीज फ्री हैं। तो अब अननेसेसरली हमको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा एट सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन विच इज नॉट राइट। उन्होंने कहा जी कि यूएस ने एक ब्लैंकेट पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है और उसमें कनाडा को बिला वजह जो है वो इंक्लूड कर लिया है, तो उसके ऊपर जो है आज उनको बहुत ज्यादा हैरत हुई। फोर्ड मोटर कंपनी जो है उसने आज अनाउंस किया जी कि वो अपनी एफ सीरीज की जो सुपर ड्यूटी पिकअप ट्रक्स हैं वो ओकविल के अंदर अब 2026 के अंदर असेंबल करने शुरू करेंगे और उसमें वो ऐड करेंगे कैपेसिटी 100,000 मोर यूनिट्स की। इसके ऊपर $3 बिलियन जो है वो स्पेंड करेंगे टू एक्सपैंड सुपर ड्यूटी प्रोडक्शन। इसके अंदर इंक्लूसिव होगा $2.3 बिलियन टू इंस्टॉल एंड असेंबली इंटेग्रेटेड स्टैंपिंग ऑपरेशंस एट ओकविल फैसिलिटी और ये सपोर्ट करेगी 1800 जॉब्स को। ये जो जॉब्स हैं ये सारी वो वर्कर्स फिल करेंगे जो कि यूनिफर का हिस्सा हैं, जिनको के कहा गया था कि 2027 में जब जो है फोर्ड अपनी ईवी प्रोडक्शन शुरू करेगा तो तब वो उस पर आके काम कर सकेंगे, तो बहुत सारे ले ऑफ्स हुए थे तो वो सारे लोग अब इसके लिए आ सकते हैं। ये जो इंक्रीज प्रोडक्शन है इसके अंदर 150 और जॉब्स जो हैं विंसर इंजन कॉम्प्लेक्स में भी जो है वो क्रिएट होंगी जो कि V8 इंजन बनाएगा इसके सुपर ड्यूटी ट्रक्स के। तो ये जो है एक अच्छी न्यूज है इनकी। ट्रंप साहब के तो जनाब जो ये जो वाइस प्रेसिडेंशियल पिक है JD वैंस, इनके बारे में तो बातें हैं ही हैं लेकिन इनकी बेगम के बारे में भी बहुत ज्यादा बातें जो हैं अब सामने आ रही हैं और लोगों को अब डर लग रहा है। पहले तो जो हर कोई कह रहा था कि ट्रंप साहब आए लेकिन अब ये जो वैंस साहब हैं इसके ऊपर लोग जो हैं बड़े डबल माइंडेड हो गए हैं। वैंस साहब ने अपनी जो पहली स्पीच की है उसमें उन्होंने कहा जी कि मैं वर्किंग क्लास अमेरिकन के लिए जो है वो काम करूंगा और डेमोक्रेट्स जो हैं ये सारा कुछ भूल चुके हैं। ओहायो से ये सेनेटर हैं और कहते हैं कि मेरे अपने जो हैं बड़े ही हम्बल रूट्स हैं मिड वेस्ट से। ये ही इज मैरिड टू उषा वैंस जो कि एक इंडियन है, लॉयर हैं खुद से और शी इज द डॉटर ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स। इनके जो वालिद साहब है उनका नाम क्रिश है और इनकी वालदा जो है उनका नाम लक्ष्मी है। तो ये चिलकुरी जो फैमिली है उससे ये हेल करते हैं फ्रॉम आंध्र प्रदेश और ये सेटल हुए हैं यहाँ पे कैलिफोर्निया में। इनके वालिद साहब क्रिश जो है वो इंजीनियर हैं और यूनिवर्सिटी लेक्चरर हैं। इनकी वालदा लक्ष्मी जो है वो बायोलॉजिस्ट हैं और जो कॉलेज एक प्रोवोस्ट हैं वो भी। ये जो लक्ष्मी है इन्होंने स्टडी किया है येल वैंस के साथ एंड शी ऑल्सो डिड मास्टर्स इन फिलोसफी फ्रॉम कैम्ब्रिज। तो इनकी जो वाइफ है उनकी मुलाकात वैंस के साथ येल के अंदर ही हुई थी जब ये लॉ के स्टूडेंट्स थे। ये जो अब उषना साहिबा हैं इनके बड़े क्लोज टाइज हैं इंडिया के साथ और इन्होंने अक्सर कहा जी कि मैं बड़ी रिलीजियस फैमिली के अंदर बड़ी पली बड़ी हूं और इसीलिए हम बड़े ग्राउंडेड हैं और ये हैं। वैंस साहब की खुद की ये हिस्ट्री है कि ये ट्रंप साहब के बड़े अपोनेंट थे, ही कॉल्ड हिम एन इडियट और उसने कहा जी ये तो अमेरिकन हिटलर बनता जा रहा है। उसके बाद जी फिर उन्होंने जो है दोस्ती शोस्ती ट्रंप साहब के साथ की और अब तो हालत ये है कि उसको वाइस प्रेसिडेंट के लिए इन्होंने किया है। CNN ने एक पोल कराया लास्ट मंथ, उसमें उन्होंने लोगों से पूछा कि JD वैंस को आप कितना जानते हैं। 13% जो रजिस्टर्ड वोटर थे उन्होंने तो कहा कि हाँ ठीक है अच्छा बंदा है ग्राउंडेड है। 20% ने कोई इसको फेवर नहीं किया। 2/3 जो है वो कहते हैं जी हमने तो कभी इसके बारे में सुना ही नहीं हुआ है और हमें नहीं पता कि ये कैसी पॉलिसीज जो हैं लेकर अब व्हाइट हाउस के अंदर आएगा। ये जो वैंस साहब हैं अपनी बेगम उषना के साथ सिनसिनाटी में रहते हैं और इनके 3 बच्चे हैं इवान, विवेक और मिराबल। और कुछ तो जो सिनिक्स ही आप कह सकते हैं जो अमेरिका के अंदर हैं उन्होंने तो कहा है जी कि अब ये पूरे का पूरा जो इंडियन सिस्टम है उसको लेके अब ये जो है आ जाएंगे यहां पे। तो अब उषना साहिबा अपने हस्बैंड को कितना इन्फ्लुएंस कर सकेंगी पॉलिसीज के ऊपर या उनकी पॉलिसीज कितनी चल सकेंगी वो तो अब आने वाले दिन ही बताएंगे, लेकिन लोगों की आंखें जो हैं वो उषना साहिबा का प्रोफाइल देख के काफी जो हैं वो रेज की हैं कि कुछ इतनी अच्छी लोगों ने कहा कि वाइब्स नहीं हमें आ रही हैं। रशिया ने कहा जी कि वो भी पॉसिबली डिप्लॉय कर सकता है अपना न्यूक्लियर टिप्ड मिसल्स अगर US ने ये डिसीजन ले लिया है कि वो लॉन्ग टर्म क्रूज मिसल्स जर्मनी के अंदर जो है वो प्लांट करने लगा है। मीडिया से बात करते हुए मॉस्को में US के ये जो डिप्लॉयमेंट है ऑफ टोमाहॉक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसल्स इन जर्मनी स्टार्टिंग 2026, इसके ऊपर बात करते हुए डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया सर्जे रेबॉक ने कहा है कि रशिया जो है वो हर स्टेप पे इनको जवाब देगा और किसी भी सिनेरियो के लिए वो तैयार है। रशिया ने अभी तक डिसाइड तो नहीं किया है कि वो कहां पे डिप्लॉय करेगा और किस कैपेसिटी में करेगा क्योंकि वो अभी तक नेटो कंट्रीज का मूव देख रहा है और अभी तक तो वो किसी को थ्रेटन नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे पास इंपॉर्टेंट मौका है कि हम भी अपनी इफेक्टिव ऑप्शंस जो हैं ऑन टेबल रखें। अब ये टर्म्स ऑफ जो ये कॉस्ट इसकी क्या होगी इन टर्म्स की वो तो बाद में पता चलेगी, लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने इसमें बड़ा अफसोस का इजहार किया रेबॉक साहब ने, उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन बड़ी सैड है, अमरीका अगर ऐसा ना करते ही तो हमको भी ऐसा कुछ सोचना ना पड़ता, लेकिन जाहिर है कि हमारे बॉर्डर के ऊपर हमारी सिक्योरिटी जो है उसको अगर ललकारेंगे तो हम भी फिर जो है वो उसमें खामोश नहीं बैठे रह सकते हैं। एसोसिएटेड प्रेस की ये न्यूज है जी, और इसके मुताबिक पूरे यूरोप के अंदर बेतहाशा गर्मी जो है वो शुरू हुई है, और इसके होते हुए ग्रीस ने अपना सबसे पॉपुलर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है एक्रोपोलिस उसको बंद किया कई घंटों के लिए। इसके अलावा दो फायर फाइटर्स जो है वो बेसिलिका लिटिका के अंदर जो फायर एक लग गई थी गर्मी की वजह से उसको बुझाते हुए साउथ इटली के अंदर उनकी डेथ हुई। इसके अलावा इटली के अंदर पैलर्मो सिसिली और बाकी के 13 जो इटालियन सिटीज हैं वो इंतहाई शदीद गर्मी के लपेट में हैं। जो बूढ़े लोग हैं वेरोना में उनको तो इटली ने कहा है कि आप इनडोर्स रहें, और जो सड़कों के किनारों पे स्प्रिंकलर्स उन्होंने चला दिए और पासर्स बाय को कहा है कि आप स्प्रिंकलर्स के अंदर जाएं जस्ट टू स्टे कूल, क्योंकि ये हॉट एयर अफ्रीका से आ रही है और ये संडे तक रहेगी जबकि टेम्परेचर जो है 43 डिग्रीज को टच करेंगे। इसके अलावा क्रोशिया जो है उसने भी रिकॉर्ड किया हाइएस्ट टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड इन डुब्रोविक, और उन्होंने कहा जी कि ये हमारा पॉपुलर टूरिज्म स्पॉट था और ये बड़ा इफेक्ट होएगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। सर्बिया जो है, सर्बिया ने तो कहा जी कि जो उनकी जो पावर कंपनी है उसने कहा जी कि इतना बेतहाशा एसी का यूज इस समर के अंदर हो गया है कि हमें तो समझ नहीं आ रही कि हम जो है ये बिजली की डिमांड कैसे पूरी कर सकेंगे। इसके अलावा साउथ ऑफ इटली जो है और नॉर्दर्न मैसेडोनिया के अंदर जो है वो वाइल्ड फायर्स हैं और उनको बुझाने के लिए जो है तैयारी यूज किए जा रहे हैं। स्पेन जो है उसने 44 डिग्रीज सदन गॉडर क्विवर रिवर जो बेसन है उसमें टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है। अल्बेनिया ने रिकॉर्ड किया है 42 डिग्रीज। तुर्की का जो इस्तंबोल है उसने भी कहा है कि हीट वार्निंग एक जारी की गई है, और उन्होंने अपने जो रेजिडेंट्स और खासतौर पर जो एल्डरली प्रेग्नेंट वुमेन बच्चे या जिनको हेल्थ इश्यूज हैं उनको कहा जी कि सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक बिल्कुल बाजारों में ना घूमें क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया है। क्रोशिया और बॉस्निया के अंदर भी टेम्परेचर जो हैं वो 40 डिग्रीज को टच कर रहे हैं, तो ये काफी जो है वो खतरे में नाक जो है बात है। एएफपी की ये रिपोर्ट है जी, और इसके ऊपर आज दुनिया ने काफी ज्यादा रिएक्शन शो किया क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसने फिर से कहा है जी कि हमने एग्जीक्यूशन शुरू कर दी है और ये जो एग्जीक्यूशन अभी की हैं उसमें 7 पाकिस्तानी जो हैं वो भी हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री जो सऊदी अरेबिया की उसके मुताबिक 2 जो हैं उनको ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए किया गया है, कन्विक्ट किया गया था, और जो 2024 में अब जो एग्जीक्यूशन हैं वो 106 को टच कर रही हैं। इसमें से एक जो था वो सऊदी भी था जो कि एम्फेटामीन जो है वो ट्रैफिक कर रहा था, और दूसरा पाकिस्तानी था जो कि हेरोइन ट्रैफिक कर रहा था। दोनों ये ड्रग्स जो हैं ये लेकर मक्का में आ रहे थे। सऊदी अरेबिया जो है उसने 3 साल के बाद फिर से एग्जीक्यूशन जो हैं ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेज में वो शुरू कर दी हैं जो कि उन्होंने खत्म कर दी थी 2022 के अंदर। 106 लोग जो है उसमें से जो 7 हैं वो ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेज हैं। 2023 में 170 एग्जीक्यूशन इन्होंने की थी जिसमें से 33 टेरर रिलेटेड क्राइम्स थे। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने आज इनको बहुत ज्यादा कंडेम किया है, उन्होंने कहा है कि इसका मतलब है ये जो डाटा हमें इस वक्त देख रहे हैं कि ये लोग एवरी सेकेंड डे एक आदमी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। 100 एग्जीक्यूशन जो हुई हैं इन 196 डेज वो ये शो करती है कि सऊदी गवर्नमेंट इंसिस्ट कर रही है कि हमको डेथ पेनल्टी ही देनी है जो कि इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करती है, और उसकी जो खुद की ऑफिशियल कमिटमेंट है उसको भी करती है क्योंकि आपको पता ही है कि एमबीएस जो है अब अपना एक जरा रोजी सा पिक्चर पेश करने की कोशिश कर रहा है सऊदी अरेबिया का। ये जो एग्जीक्यूशन इस साल हुई है इसके अंदर 78 सऊदीज हैं, 8 यमनी हैं, 5 इथियोपियंस हैं, 7 पाकिस्तानी हैं, 3 सीरियन और 1 ईच फ्रॉम श्रीलंका, नाइजीरिया, जॉर्डन, इंडिया और सूडान से है। और सऊदी अरेबिया का कहना है कि ये जो एग्जीक्यूशन हैं दे आर कंपेटेबल विद द शरिया लॉ, और मुल्क के अंदर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जाहिर है कि वेस्ट जो है अब इसको नहीं मानता है और उसकी वजह से काफी आज जो है शोर हंगामा हुआ है। चाइना के अंदर जो जोंग है इन सिचुआन प्रोविंस उसके अंदर 16 लोगों की डेथ हुई है जिस वक्त एक 14 स्टोरी जो कमर्शियल बिल्डिंग है, एक शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर आग लगी। और यहां पे फायर फाइटर्स देखे गए फायर को बुझाते हुए, और फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीम्स जो थी उन्होंने 75 लोगों को बड़ी ही एहतियात से बाहर निकाला, लेकिन फिर भी 16 डेथ्स हुई। ये जो फायर थी ये शुरू हुई थी जो बॉटम ऑफ द बिल्डिंग थी, जहां पे के होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ऑफिसेज, रेस्टोरेंट्स, मूवी थिएटर्स। और जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें पता चला है कि जो कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस चल रहे थे उसने ट्रिगर किया ये फायर। अभी तक कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं आई हैं और जैसे ही आएंगी तो ये पुलिस का कहना है कि हम देंगे, लेकिन अभी तक हम कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जनाब सिचुएशन है। एंड जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल। यहां पे 1400 लोगों की फैसिलिटी है एंड दे आर वेरी आइडली लोकेटेड एट 6479653823। और वो कहते हैं जी कि अगर आपको कोई भी अपने बड़े या छोटे कोई भी इवेंट्स करने हैं तो आप यहां पे कर सकते हैं। इसके अलावा जी हमारे जो हैं सुल्तान भाई ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे होते हैं। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस आपको पता ही है 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट के ऊपर लोकेटेड है, और इनका नंबर है 9054502828। कोई भी आपको अप्लायंसेस चाहिए तो आप सुल्तान भाई को कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर आज जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने आज इंस्ट्रक्ट किया है एफबीआर को कि 4.9 मिलियन जो वेल्दी पाकिस्तानीज हैं उनको टैक्स नेट के अंदर लेकर आए ताकि जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर टैक्सेस का बर्डन कम किया जा सके। पीएमओ की एक स्टेटमेंट जो आई है उसमें उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज 4 घंटे की मीटिंग की जिसमें कि एफबीआर में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उसको रिव्यू किया, और उन्होंने कहा कि पूरे का पूरा एफबीआर जो है डिजिटलाइज करने की जरूरत है। उन्होंने प्रोग्रेस देखी इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम्स रिफॉर्म्स जो पिछले 8 वीक्स में की गई हैं उसके ऊपर। एफबीआर के स्पोक्स पर्सन ने कहा जी कि हमारी जो डिजिटलाइजेशन है इंटरनेशनली रिनाउंड कंसल्टेंट मैकिन्जी जो है वो इसको देख रही है, और पिछले 4 महीनों में 800 बिलियन रूपीज के टैक्स रिफंड जो है फ्रॉड के वो हमने डिटेक्ट किए हैं। इसके अलावा हमने टैक्स रिफंड सिस्टम जो है उसको भी इम्प्रूव किया है। ब्रीफिंग में ये बताया गया कि 83,579 टैक्स केसेस ऑफ 3.2 ट्रिलियन रुपीज जो है वो पेंडिंग है इन सेपरेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल। 63 केसेस वर्थ 44 बिलियन रुपीज जो थे वो पिछले 4 महीनों में सेटल किए गए हैं। न्यू टेक्नोलॉजी ने आइडेंटिफाई किए हैं 4.9 मिलियन इंडिविजुअल्स जो कि टैक्स के घेरे में आते हैं। एफबीआर की जो ट्रेडर फ्रेंडली मोबाइल ऐप है उसमें रजिस्टर किए हैं 150,000 नए रिटेलर्स सिंस April 1, 2024। और प्राइम मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्ट किया है कि अपेलेंट ट्रिब्यूनल्स जो है उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है ताकि ये टैक्स के जो सिलसिले के केसेज है ये फौरन रेजोल्यूशन की तरफ जाए। जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर जो हैं वो अब सेकेंड रिटायर्ड जज बन गए हैं जिन्होंने के ना बोला है सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक बेसिस पे नौकरी लेने के लिए, और उन्होंने उसके लिए पर्सनल रीजंस बनाए हैं। जो पहले थे इससे पहले जस्टिस रिटायर मुशीर आलम उन्होंने भी ये जो थी टर्न डाउन की थी, और उन्होंने कहा था कि मैं एडहॉक बेसिस पे 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनूंगा। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा जो हैं वो कल मुलाकातें करेंगे 4 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस से टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि ये पता ही है कि बेतहाशा पेंडिंग केसेस हैं और उसके लिए जो है कोर्ट्स को जजेस चाहिए हैं। पीटीआई जो है उसने अलबत्त इसको सारे को डिसऑनेस्ट जो है वो एक्शन का है। पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब खान उन्होंने मीडिया के साथ इस्लामाबाद में बात करते हुए कहा कि 3 से 4 जजेस जो हैं वो इस जो थाउजेंड्स ऑफ पेंडिंग केसेस हैं उनको खत्म करने के लिए इफेक्टिव नहीं रहेंगे। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि एक मोटिव है कि लाइक माइंडेड जजेस को सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जमा किया जाए और पीटीआई के खिलाफ किया जाए। हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स और लॉयर्स की फ्रेटर्निटी जो है हमने इसको रिजेक्ट करते हैं। एडहॉक जजेस जो है उनकी अपॉइंटमेंट जो है एटलीस्ट उसमें ये आप जरूर कहते हैं फिर कि पीटीआई के केसेस जो है वो ना उसकी हियरिंग करें। इसके साथ साथ पीटीआई के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौर उन्होंने भी इस मूव को डिसऑनेस्ट कहा। उन्होंने कहा जी कि ये अचानक से कैसे इनको ख्याल आ गया कि ये जो है वकेशन पे हैं सारे लोग तो एकदम से जो है मैं अपॉइंट कर लूंगा जजेस, पहले पूरे लोगों को तो आने दो फिर उसमें से चूज करो। उन्होंने कहा जी ये सारे का सारा मामला हम रेफर करेंगे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को। पाकिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही अब जो पतली हालत में है उसकी वजह यह है कि हायर एजुकेशन कमीशन का जो डिग्री वेरिफिकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल डाउन है और पिछले 10 दिन से कोई काम नहीं कर रहा है और हायर एजुकेशन वाले सो रहे हैं लग रहा है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी वो स्टूडेंट्स को बता नहीं रहे हैं। डिग्री वेरिफिकेशन जो है उसकी वजह से सैकड़ों ही स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान है, क्योंकि कुछ बच्चों ने बाहर ट्रेवल करना है हायर स्टडीज के लिए, और ये बिल्कुल एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट और वाइटल है कि जो हायर एजुकेशन कमीशन है वो डिग्रीज को वेरीफाई करे और एजुकेशन क्रेडेंशियल्स जो है उसको बताए कि ये बिल्कुल ठीक है, तभी फिर जो है फॉरेन डिग्री, फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की डिग्रीज मानती हैं। हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो अटेस्टेशन करता है इन सारी डॉक्यूमेंट्स की और वेरीफाई करता है कि हाँ ये फोर्ज्ड नहीं है, ये जो है ओरिजिनल है। तो आज एचईसी के ऑफिशियल्स ने ये कंफर्म किया कि इस्लामाबाद जो का जो है ऑफिस उसके अंदर मेल फंक्शन है, और उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट डेट्स और चालान्स जो हैं जल्दी हम स्टूडेंट्स को बताएंगे जैसे ही सिस्टम रिकवर करेगा। तो पाएं 10 दिन का तुम सोच रहे हो, सो रहे हो, कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ले आके तुम विद इन 24 आवर्स आप अप एंड रनिंग कर सकते। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी दुनिया की जो है जिनके सारी दुनिया के अंदर ऑफिस हैं उनको कभी 10 दिन वो अफोर्ड कर सकते हैं कि सिस्टम डाउन है? भाईजान काम ही नहीं हो सकता, तुम ठंड रखी हुई है, बच्चों भी जलील कर रहे हो, मतलब है कोई हाल है थोड़ा। एमएनए मुअज्जम खान जतोई जो हैं, जिसके के बारे में पीटीआई ने यह क्लेम किया था कि उनको अबडक्ट किया गया था, अब पता चला है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस जो है वो असल में उन्होंने इनको अरेस्ट किया था। ये पीटीआई के एमएनए हैं, उन्होंने आज हैंडओवर किया है मुअज्जम को सदर पुलिस स्टेशन ऑफ मुजफ्फरगढ़। इनके खिलाफ जो है केसेस भी उन्होंने बनाए हैं। पीटीआई मुजफ्फरगढ़ के सेक्रेटरी जनरल जो है माहर जावेद हसन, उन्होंने कहा जी कि ये ही वेंट मिसिंग और हमें लगता है कि अनआइडेंटिफाइड लोगों ने इनको जो अबडक्ट किया था इनके रेजिडेंस मुल्तान से, उसके बाद हमें पता नहीं चला था कि ये कहां है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट आया है रिजर्व सीट्स के ऊपर पीटीआई के फेवर में, उसके ऊपर ये अब पीटीआई ब्लेम कर रही है कि ये हमारे लोगों को उठा के इनको सप्रेस कर रही है और इनको प्रेशराइज कर रही है कि ये अपनी एलिजियंस जो है वो चेंज करे और पीटीआई के साथ खड़ा ना रहे। पीटीआई के चेयरमैन गौहर अली खान ने कहा कि लास्ट वीक पीटीआई के बहुत सारे लॉ मेकर्स को फोर्स किया गया है कि वो अपनी लॉयल्टी स्विच करें, हम ये एबडक्शन जो है पीटीआई के लीडर्स की और उनके फैमिली मेंबर्स की उनको हम कंडेम करते हैं। इसमें जो इन्होंने कहा कि जी अलेजली जिनको अबडक्ट किया गया है वो है एमएनए साहिबजादा अमीर सुल्तान, यानी इनकी जो फैमिलीज और इन लोगों को जो है थ्रेटन भी किया जा रहा है। रिजवान मलिक मियां फियाज अहमद चगड़ा के बेटे जो हैं मियां तजमल हुसैन और इनके ब्रदर मियां इम्तियाज हुसैन और बहुत सारे जो इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको तो पीटीआई ने आज काफी शोर मचाया है। अच्छा जी पीपीपी, पहले तो कहते थे जी इमरान खान साहब यू टर्न्स लेता है, अब तो लग रहा है कि पीपीपी सिर्फ यू नहीं बहुत सारे यू टर्न्स ले रही है। आपको बताइए थोड़े दिन पहले हम आपको बता रहे थे कि जनाब इन्होंने जो पीपीपी के बहुत सारे जो लीडर्स थे जैसे कि रजा रब्बानी और फरतुल्ला बाबर वगैरह, वो सारा वक्त कह रहे थे कि हो हमें तो बताया ही नहीं गया और हम तो बड़ा कंडेम करते हैं कि ये जो बैन कर रहे हैं पीटीआई को, और खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा कि जी बिल्कुल हमको तो बताया ही नहीं गया, हमको ऑन बोर्ड लिया ही नहीं गया जब ये फैसला गवर्नमेंट ने बनाया कि पीटीआई को बैन करें। आज पीपीपी के जो सेक्रेटरी जनरल है नैयर बुखारी साहब, उन्होंने कहा जी कि नहीं जो पार्टी जो है वो बिल्कुल फेडरल कैबिनेट के डिसीजन के साथ खड़ी हुई है, और ये जो हमारे सीनियर मेंबर्स ने डिक्राई किया था ये पीटीआई का बैन, ये उनका खुद का अपना जो है वो डिसीजन है और ओपिनियन है। उन्होंने कहा जी कि ये इशू जो है ये पार्टी लेवल के ऊपर डिस्कस होते हैं और पीपीपी गवर्नमेंट के साथ खड़ी रहेगी, हम उनके एलाए हैं और हर किसी का डिफरेंट ओपिनियन होता है लेकिन जो पार्टी का ओपिनियन है वो एंड में मैटर करता है, और जो ये जो इनके अपने पर्सनल ओपिनियन थे दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद पार्टी पॉलिसीज। तो अब ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई कौन सही बोल रहा है, क्योंकि और भी बहुत सारे, मैंने कल भी आपको बताया था मरी साहिबा भी थी और जो है वो और भी कुछ लोग थे, तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या हो रहा है। आईएसपीआर की आज ये रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक जो जीएचक्यू के अंदर आज 97th एनिवर्सरी ऑफ फाउंडिंग ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ऑफ चाइना जो है वो सेलिब्रेट की गई। इसके अंदर जियांग जाइडोंग चाइनीज एम्बेसडर टू पाकिस्तान जो थे वो चीफ गेस्ट थे। ये सेरेमोनी जो थी दिस वाज अटेंडेड बाय मेजर जनरल वांग जोंग, डिफेंस अटैशे, ऑफिशियल्स ऑफ चाइनीज एम्बेसी, ऑफिशियल्स फ्रॉम पाकिस्तान ट्राय सर्विसेज, और इसको जो था ऑर्गेनाइज किया था जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान के, और उन्होंने चाइनीज डेलीगेशन को जीएचक्यू पिंडी रावलपिंडी में किया था, वेलकम किया था। उन्होंने बहुत ज्यादा मुबारक दी पीएलए को और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है फॉर चाइनीज डिफेंस सिक्योरिटी एंड नेशनल डेवलपमेंट, उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा जी पाक चाइना टाइज जो है वो एक्सेप्शनल है, हमने हर तरह की जो स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंट में हम बड़े म्यूचुअल ट्रस्ट और अनवेवरिंग बिलीफ के साथ एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और सपोर्ट करते हैं। जनरल आसिम मुनीर ने कहा जी कि हम दोनों की जो आर्मीज हैं बड़ी स्ट्रांग है और हम एंगेज करते हैं बायोलेटरल मिलिट्री कोऑपरेशन में, और इस सब की चीजों की तारीफ जो है अम्बेसडर जियांग जायडोंग ने भी की और उन्होंने शुक्रिया अदा किया फॉर जनरल मुनीर का फॉर होस्टिंग द इवेंट। तो ये जो थी एक अच्छी थी। अच्छा जनाब, हिंदुस्तान के अंदर आज कुछ काफी अफसोस के वाक्य रहे, काफी सारे वहां पे हादसे हुए हैं, तो उनमें से जो मेजर हादसे हुए उनकी हम डिटेल्स देते हैं। एक तो ये हुआ वहां पे जो चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो है वो डीरेल, उसके 8 कोचेज आज हुए हैं, और जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी उसमें तो कहा गया था जी कि 2 लोगों की डेथ हुई है और 34 इंजर्ड है, लेकिन लग रहा है कि अब डेथ टोल जो है वो बढ़ सकती है। ये जो डीरेलमेंट हुई है ये नियर गोंडा हुई है यूपी के पास, यहां पे एम्बुलेंसेज और मेडिकल टीम्स जो थी वो फौरन पहुंच गई थी। ये हादसा जो हुआ था बिटवीन कोटीगंज और झिलाही रेलवे स्टेशन के बीच में हुआ था, विच इज 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली। ये जो लोको पायलट था ये कहता है जी कि मैंने पहले तो एक ब्लास्ट की आवाज सुनी और फिर डीरेलमेंट हुआ है, लेकिन उसने कुछ ज्यादा डिटेल्स इसकी नहीं दी है। उससे पहले जो यूपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक थे और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थी नेहा शर्मा, उन्होंने कहा जी 4 लोगों की डेथ हुई है। फिर 5 घंटे के बाद उन्होंने फिगर्स रिवाइज की और उन्होंने कहा कि ओ नहीं नहीं, जब वहां पे लोग पुलिस और वो सारी रेस्क्यू टीमें पहुंची तो लोग बिखरे पड़े थे, तो उनको ये लगा कि जैसे बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, तो नहीं नहीं सिर्फ 2 लोगों की ही डेथ हुई है और कन्फ्यूजन हो गई थी। तो अब जो है पहले 4 थे, अब 2 थे और अब कहा जा रहा है कि शायद और भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो है 7 लोग जो कि वापस आ रहे थे पिलग्रिमेज से एक टेम्पल टाउन जो है इनका प्रधानपुर, उसमें 3 लोग जो हैं बड़े गंभीर अंदाज में जख्मी हुए हैं क्योंकि उनकी टैक्सी जो है वो जाके गिर गई महाराष्ट्र का जो झलना का एरिया है उसके एक वेल में, क्योंकि जो है वो टैक्सी वाला शायद तेजी से चला रहा था या क्या था, तो उसके ऊपर भी अब एक प्रोब बिठाई गई है कि भई ये जो है वाकया कैसे हुआ कि जो पिलग्रिम्स हैं ये जब आ रहे होते हैं तो इनको हिफाजत से क्यों नहीं लाया जाता। इसके अलावा और जो बहुत बड़ा वाकया, जो असल में बड़ा वाकया, वो ये है कि इंडियन क्रू के मेंबर्स ऑफ कॉमोरोस फ्लैग्ड ऑयल टैंकर जो कि कैप्साइज कर गया था ओमान में, जिसका अभी तक पता नहीं चल रहा है कि ये टैंकर कैसे जो है कैप्साइज किया है, उसमें एक इंडियन क्रू का मेंबर जो है उसकी डेथ हो गई है। लास्ट नाइट जो है इंडियन नेवी ने जो 8 इंडियंस और 1 श्रीलंकन जो था उसको रेस्क्यू किया था इस शिप में से INS तेज, और ये जब खबर आई थी इंडियन नेवी को कि ये टैंकर कैप्साइज किया उसी वक्त ये वहां पे भागे थे और इन्होंने इस कार्गो शिप में से लोगों को निकालने की कोशिश की थी। ये कैप्साइज किया था अबाउट 25 नॉटिकल माइल साउथ ईस्ट ऑफ रास मदराक ओमान के अंदर, और टैंकर जो था एमटी फाल्कन प्रेस्टीज उसके अंदर 16 मेंबर्स थे, 13 इंडियन थे और 3 जो थे वो श्रीलंकन थे। तो ये काफी जो है बैक टू बैक अफसोस की बातें हुई हैं। अच्छा जी, अब ट्रंप साहब के ऊपर जो ये असैसिनेटेड नेशन बिड की गई है उसके ऊपर अब बीजेपी जो है उसने भी अपने मुल्क में लीडर्स को बड़ा सावधान होने के लिए कहा है कि भाई मोदी जी के ऊपर ज्यादा जो है उनके खिलाफ बातें मत करो क्योंकि उसके बहुत ही सीरियस जो है वो हो सकते हैं। बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने कहा जी कि ये जो आप वर्ड्स यूज करते हैं हिंसा और हत्या, और रिपीटेडली आप ये मोदी जी के खिलाफ ये जो इंडिया ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली ये यूज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इससे लोगों को बढ़ावा मिल सकता है और मोदी जी के साथ भी कुछ इस तरह की अनहोनी हो सकती है। उन्होंने कहा जी कि सोनिया गांधी जी जो है वो वर्ड बहुत ज्यादा सबसे पहले उन्होंने यूज किया था, मोदी जी को कहा था मौत का सौदागर 2007 में, लेकिन बीजेपी ने तो ये जो कांग्रेस ने लगाई थी इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी के जमाने में उसके बारे में तो हमने कभी इस तरह के गंदे अल्फाज जो है वो यूज नहीं किए। तो अपोजिशन जो है इंडिया अलायंस खासतौर पे कांग्रेस को बहुत ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है। उन्होंने कहा जी कि आपने देखा ही है कि मोदी जी की सिक्योरिटी कैसे कॉम्प्रोमाइज की गई थी पंजाब में जब वो गए थे 2022 में, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर को खतरा हो सकता है। इसके अलावा अपोजिशन कॉन्स्टेंटली मर्डर रिलेटेड रेफरेंसेज जो है वो देती है और तकरीबन कोई 6 टाइम उन्होंने मोदी जी के खिलाफ इनको यूज किया है। उन्होंने कहा जी कि त्रिवेदी साहब ने कि जापान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे हैं उनको भी मारा गया था 1.5 साल अगो और अब ट्रंप साहब की लाइफ के ऊपर भी ऐसा अटैक हुआ है, तो ये चीजें जब आप इस तरह के लफ्ज बोलते हैं तो दे इंसाइट वायलेंस और उसके बहुत ही सीरियस जो है रिजल्ट्स हो सकते हैं। इवन राहुल गांधी जी जो हैं वो भी इस तरह के लफ्ज जो है वो यूज करते हैं, मारना डंडे से मारना, तो ये इस तरह के लफ्ज जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, आप पॉलिटिक्स को पर्सनल हेट के साथ कंबाइन मत करो। अच्छा जी चलो ठीक है। और जनाब आज है 18 जुलाई और आज 18 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंडरी गजल सिंगर मेहदी हसन खान साहब। और इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे रोल्स जो थे वो प्ले किए थे। जो सिंगर तो पार एक्सेलेंस थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, गजल आर्टिस्ट थे। ये पैदा हुए थे राजस्थान के लूना के एरिया में और फिर इन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी नहीं बल्कि हिंदी फिल्मों के अंदर भी बड़ा सक्सेसफुल म्यूजिक दिया, जैसे कि धुन, मृग तृष्णा और हैदर। इनको पाकिस्तान के अंदर तमगा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और हिलाल इम्तियाज दिया गया था। ही डाइड ऑन June 13, 2012 इन कराची। इनको शहनशाह गजल भी कहा जाता था। इनकी आवाज जो है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि क्रॉस बॉर्डर भी बहुत ज्यादा पसंद की जाती थी और बहुत ज्यादा लव और रिस्पेक्ट इनको शो किया जाता था। लता मंगेशकर तो कहती थी इनके गले में भगवान बोलते हैं। और इन दोनों ने लेकिन इतना प्यार होने के बावजूद सिर्फ एक ही डुएट जो था इकट्ठे गाया था, तेरा मिलना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर इनको मौका नहीं मिल सका। गजल सिंगर तलत अजीज साहब ने भी इनको बहुत आज याद किया। उन्होंने कहा कि मेरी जो म्यूजिक हिस्ट्री की जो इंस्पिरेशन है और गुरु है और जो फादर लाइक फिगर और फ्रेंड है वो मेहदी हसन साहब हैं। तो ओहो, जो लोग हमारा टीवी देख रहे हैं वो जरा देखें हमारा जो जीशान है, जीशान जनाब मिला है मेहदी हसन साहब से, एक यंग जीशान। तो आप जरा देखें बड़ी प्यारी तस्वीर उसने लगाई है जी, वो आप देखें जरा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है जीशान, बड़े खुश नसीब हो कि जो इनसे मिले हो। और हम भी अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि हमने भी इनको अपने सामने बैठ के गाते हुए देखा इस्लामाबाद में। तो जनाब खुश नसीबी है हम सारों की। और जनाब नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने आज अपनी लॉन्ग एसोसिएशन कमल हासन साहब के साथ कही है और उन्होंने कहा जी कि मैं बड़ा उनको चाहता हूं, बड़ा पसंद करता हूं, बहुत बड़े वो स्टार हैं। मैं इनका डायलॉग कोच भी था 2012 में जो फिल्म आई थी अभे उसमें, और जब मैं जॉब था तो मैं इस तरह के छोटे मोटे गिग्स कर लेता था। और एक सीनियर जो थे NSD से उन्होंने मुझे कहा कि भाई साउथ में तुम्हें काम काफी मिल सकता है। जब मुझे बॉलीवुड में नहीं मिल रहा था तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आती थी तो मैं उसको ग्रैब करता था और उन अपॉर्चुनिटीज की वजह से मेरे काफी इंटरेक्शन कमल हासन साहब के साथ रहते थे। मैंने इनके लिए तुगलक की स्पीच जो थी वो भी परफॉर्म की थी और इन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इतने बड़े अगर स्टार हो तो तुम क्या 10 डिफरेंट तरीकों से ये स्पीच कर सकते हो। तो मैंने उनको कहा जी कमल हासन साहब मैं 3-4 तरीके से ही कर सकता हूं, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि कमल हासन साहब वाकई वो स्पीच 10 डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं, डांसर हैं और अपनी बॉडी पे उनको बड़ा कंट्रोल है और मैं समझता हूं कि वो एक कमाल के एक्टर हैं। ये आज बातें जनाब नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने कमल हासन साहब के बारे में कही। और जी सोनाक्षी सिन्हा साहिबा ने उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त तक संजय लीला भंसाली ने मुझे हीरा मंडी के अंदर कास्ट नहीं किया था, हीरा मंडी द डायमंड बाजार, उस वक्त तक जो है लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते थे। जब से मैंने फरीदन का रोल प्ले किया है इस वेब सीरीज में लोग मुझे सीरियस लेने लगे हैं। उनसे क्वेश्चन किया गया था अभी जो लेटेस्ट इंटरव्यू है कि कैन यू प्ले गर्ल नेक्स्ट डोर स्वीट हार्ट एंड स्वीट वाइफ, तो उन्होंने कहा जी मैं हर तरह का रोल कर सकती हूं लेकिन मुझे विजुअलाइज किया संजय साहब ने और इतना इस तरह का रोल दिया, मैं उनके लिए बड़ा शुक्रगुजार हूं। मैंने अक्सर लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में कहा है कि मैं नेगेटिव विलनस और साइकोटिक कैरेक्टर्स करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं लेकिन कोई भी मुझे फिल्म इंडस्ट्री में सीरियसली नहीं लेता है। इस तरह के रोल करके जो बड़े चैलेंजेस होते हैं आपको भी चैलेंज करते हैं और आपको कुछ डिफरेंट करने का भी टाइम मिलता है, हैं जी ऐसे है। और जनाब हिंदुस्तान के बड़े सितारे क्रिकेट के हार्दिक पांड्या, उनकी और उनकी वाइफ नताशा स्टैनकोविच जो है उनके बीच में सेपरेशन हो गई है। उनकी एक जो है वो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा जी कि हम म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हैं टू पार्ट वेज। बहुत दिनों से, बहुत हफ्तों से बल्कि ये स्पेकुलेशन थी इनके रिलेशनशिप स्टेटस पे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि थोड़े दिन पहले नताशा साहबा जो है वो मुंबई से चली गई थी अपने बेटे अगस्तिया को लेके, लेकिन उन्होंने आज जो स्टेटमेंट दिया उसमें कहा जी ये दोनों जो है अपने बच्चे को जो 3 साल का है ना बेटा उसकी परवरिश करते रहेंगे और 4 साल हमने बहुत प्यार मोहब्बत में एक दूसरे के साथ गुजारा लेकिन अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, हमने बहुत ज्यादा कोशिश की तो इसलिए बेस्ट है कि हम दोनों जो हैं हम दोनों के इंटरेस्ट में कि हम अलहदा हो जाएं। ये बहुत ही टफ डिसीजन था क्योंकि हमने बहुत सारे खुशी और गम और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कंपेनियनशिप में हम साथ रहे हैं और एक फैमिली हम रेज कर रहे थे लेकिन ये अब हमको करना ही पड़ा है। ठीक है जी। और जनाब मेरी हो गई प्रीडिक्शन गलत, क्योंकि मैंने कहा था T20 का कैप्टन बनेगा हार्दिक पांड्या, लेकिन T20 इंडियन टीम की लेकिन सिर्फ तीन मैच ओनली थ्री मैच सीरीज के लिए सूर्या कुमार यादव को T20 का कैप्टन बनाया गया है। और आमिर बहुत हंस रहा है क्योंकि आमिर ने मुझे उस वक्त क्वेश्चन किया था कि क्यों आपको चांसेस नहीं लग रहे हैं सूर्या कुमार यादव के, और मैंने कहा था नहीं लग रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी लग रहे हैं। तो भारत जी अभी तो बीसीसीआई ने कहा है कि तीन मैच की जो सीरीज जो श्रीलंका के अगेंस्ट हो रही है उसमें T20 का कैप्टन हम सूर्या कुमार यादव को, क्योंकि जाहिर है वो बेचारा अपनी बीवी के साथ लड़ झगड़ भी तो रहा है ना हार्दिक पांड्या। ओडीआई के जो स्किपर हैं रोहित शर्मा और जो कोहली हैं उन्होंने कहा जी कि हम ओडीआई के लिए जो है वो अवेलेबल रहेंगे नेक्स्ट मंथ जो श्रीलंका के अंदर हो रहा के खिलाफ हो रहा है, यानी T20 भी श्रीलंका के खिलाफ है और ओडीआई भी श्रीलंका के खिलाफ है, तो ये नेक्स्ट मंथ होगा। शुभमन गिल जो है वो इन दोनों टीमों के वाइस कैप्टन रहेंगे T20 के भी और ओडीआई के भी। इंडियन टीम जो है वो अर्ली नेक्स्ट वीक इस टूर के लिए जाएगी अंडर द न्यू हेड कोच गौतम गंभीर, जिनको के 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। रियान प्राग जिसने के 750 स्कोर की थी इन विजय हजारे ट्रॉफी, और दिल्ली का जो बॉलर है बहुत ही ज्यादा तेज हर्षित राणा, ये दो नए चेहरे जो हैं इनको ओडीआई स्क्वाड के अंदर शामिल किया गया है। अलबत्ता रविंदर जडेजा जो है जिसने के कहा था कि मैं T20 से रिटायर हो रहा हूं आफ्टर रोहित एंड कोहली, उसको ओडीआई के अंदर कोई भी जगह नहीं मिली है, ये है। और जनाब कनेडा जो है उसके लिए अफसोस की खबर यह है कि उसका वन ऑफ द टॉप मेडल होपफुल जो है पेरिस ओलंपिक के लिए ये डेकलेट थे, ये जो खेलते हैं डेकाथलीट जो है पियर्स लिपेज 28 इयर्स के हैं, ये अब पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, विडवी के रहने वाले हैं, इनको बैक इंजरी आ गई है। अपने इंस्टाग्राम के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि मुझे जो है तकलीफ ये शुरू हुई थी अप्रैल के अंदर, हर्निएटेड डिस्क मुझे हो गया है जिसको के लिए मुझे सर्जरी चाहिए है बैक में, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा और मैं ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करूंगा, ये बड़ा ही डिफिकल्ट डिसीजन था लेकिन मुझे विड्रॉ करना पड़ रहा है क्योंकि मैं खेल के और इस इंजरी को फर्दर एग्रेवेट नहीं कर सकता हूं। और जी अभी जो हम बात कर रहे थे कैसर सगीर के साथ के कुछ लोगों की बॉलें बाबर आजम नहीं खेल सक रहे थे, तो उसका हम जिक्र करते हैं। बाबर आजम और फकर जमान को आज जो वीडियो वायरल हुई अगर आप देख रहे हैं एक्स के ऊपर तो आपको पता चलेगा उबैद शाह जो कि बहुत ही यंग इमर्जिंग टैलेंट है और नसीम शाह का छोटा भाई है, उसकी नेट में बॉलें ये दोनों ही प्लेयर नहीं खेल सक रहे थे और लग रहा था कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत डिसकंफर्ट इनको नजर आ रहा था जब जब उबैद जो है अपनी डिलीवरीज कर रहा था। दोनों जो हैं बहुत ही अनसक्सेसफुली इसका जो बॉल है उसको टैकल करने की कोशिश कर रहे थे और ये नहीं हो रही थी, तो इसमें अब बाबर आजम की जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं उसको आज फिर से जो है बड़ा क्वेश्चन बनाया गया अगर आप एक्स पे देख रहे हैं। इसके अलावा रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी और बाबर के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी लग रहा है कि शायद उनको नीचे लेकर आया जाएगा फॉर अपकमिंग सीजन, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी टीम के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है ताकि टीम को अच्छा बनाया जा सके, उस सिलसिले में ऐसा हो सकता है। तो अब ये बच्चे के बॉल्स भी अगर नहीं खेल सकते हैं तो पैन फिर मतलब व्हाट इज गोइंग, या तो ड्रामा है या नहीं है, हकीकत क्या है फसाना क्या है कुछ मालूम नहीं है। बहरहाल ये वीडियो बड़ी वायरल हुई है, ठीक है जी। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट अफगानिस्तान के मोहम्मद समीम फैजाद के बारे में, 22 ईयर्स ओल्ड है एंड ही इज द ओनली ओलंपिक एथलीट ट्रेनिंग फॉर द ओलंपिक गेम्स इन अफगानिस्तान। 6 अफगान्स इंक्लूडिंग 3 विमेन जो कि एक्नॉलेज नहीं है बाय जिनको के एक्नॉलेज नहीं करते हैं तालिबान गवर्नमेंट के लिए, वो अब पेरिस ओलंपिक्स के लिए कम्पीट करेंगे इन साइकिलिंग एथलेटिक्स स्विमिंग एंड जूडो। फैजाद जो हैं वो ओनली टीम मेंबर हैं बाकी 6 में से, क्योंकि 6 ऑल टुगेदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 5 जो हैं मुल्क से बाहर हैं, ये सिर्फ जो है अफगानिस्तान में रहता है और बड़ी ही इसकी जो है रिग्रेस रिजीम है, गरीब है तो इसलिए बहुत सारी ऑड जॉब्स करता है टू फंड हिज 4 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग इन जूडो। वो कहता है जी कि जूडो मीन्स अ लॉट फॉर मी, मेरे बड़े बिग ड्रीम्स हैं कि एक दिन मैं ओलंपिक लेवल के ऊपर खेलूंगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसने बैन किया है अफगानिस्तान को फ्रॉम गेम्स, और 1999 में उन्होंने कहा था कि जब ये पहला अफगान रूल आया था तो उन्होंने कहा था जी कि आप चूंकि औरतों को बैन करते हैं स्पोर्ट्स में से, तो इसलिए हम आपको इजाजत नहीं दे सकते हैं कि आप के मर्द जो हैं सिर्फ वो पार्टिसिपेट करें। तो अब ये जो है भरल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अब देखेंगे जनाब कि बाकी बेचारों के क्या फेट होते हैं।
ठीक हो गया जनाब, ये थी आपकी गर्मा गर्म खबरें,
पखदियां खबर,
पखदियां खबर हो गई।
यस,
तो फिर एक और वो मैं जीत गया।
हाँ,
प्रेडिक्शन।
हाँ, ये प्रेडिक्शन आपकी नहीं थी बिल्कुल, आपने ये नहीं कहा था कि हर हाल में, जैसे मैं कहती हूँ हर हाल में ये, आपने कहा था नहीं, आपने कहा था आप उसके ऊपर गौर नहीं करी, वो नहीं हो सकता।
मैं हो सकता है, मैंने कहा था
कि आपका सेंटेंस ये था कि क्या आप सूर्या कुमार यादव को नहीं देख रही बनते हुए, तो मैंने कहा था कि नहीं, सूर्या कुमार अभी छोटा है, उसको जरा और उसकी एक्सपीरियंस की जरूरत है, तो मैं हार्दिक पांड्या को बनता हुआ देख रही हूँ। हमारी ये डिस्कशन हुई थी, आपने ये नहीं कहा था हर हाल में कि ये जीतेगा या ये ही बनेगा, आपने ऐसे नहीं कहा था। अच्छा,
लेकिन आपकी तो गलत हो गई।
मेरी गलत हुई, मैंने तो मान लिया, मैं आपकी तरह थोड़ी हूँ कि मैं ना,
आपकी गलत हो गई,
गलत हुई,
मेरी सही नहीं हुई, आप ये कह रही हैं।
नहीं, आपकी सजेशन ठीक हुई, बिल्कुल आपकी सजेशन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि आप कह रहे थे कि क्या आप उसको गौर नहीं करें, यानी कि आपका कहने का ये मतलब था कि शायद उसको क्यों नहीं बना रहे हैं। हाँ, उसको क्यों नहीं बना रहे हैं, उसको भी बना सकते हैं शायद, आप ये कह रहे
हैं। तरीके से विन हो गई ना।
हाँ चलो ठीक है जी, आप जीत गए हैं। माय बॉस, सॉरी, आई एम सॉरी।
ख्याल जब उसी वक्त किया जाता है ना जब आप कहते हैं कि यार, जब आपका झुकाव होता है जिस तरह,
यानी कि आपका ख्याल मैंने कहा ठीक था,
थैंक यू,
और मेरा जो प्रेडिक्शन था वो गलत था। मैंने ये अभी बोल दिया ना,
ये भी एक $1 million आप लूज कर गए। वो आप $50-50, $20-20 वाले थे ना, पेट्रो कार्ड निकल आता है गैस का $20 का, वो वाली जीत जाती है।
अच्छा अच्छा,
वॉलमार्ट का।
लेकिन अभी उन्होंने फुल डिसीजन नहीं बनाया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये इसको अभी इसको 3 मैच के लिए बनाया।
लेकिन जो आपने न्यूज सुनाई ना, आप, मैं इस बात से एग्री करूंगा, शायद वो अभी मेंटली फिट नहीं,
फिट नहीं है ना, इसलिए क्योंकि वो शादी के चक्कर उसके चल रहे हैं बेचारे,
चल रहे हैं उसके,
तो उसने खुद ही शायद बोर्ड को कहा होगा कि अभी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए टू सेटल डाउन।
यस,
हाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि 3 मैच के लिए स्पेसिफिकली आज बीसीसीआई ने कहा 3 मैचेस जो श्रीलंका में खेले जा रहे हैं T20 के, उसके लिए इसको बनाया, क्योंकि उनको इतना स्पेसिफाई करने की फिर जरूरत नहीं थी ना, वो कह सकते थे कि जी T20 का कैप्टन अब ये है, तो उन्होंने स्पेसिफिकली जो सेंटेंस लिखा, उन्होंने कहा जी फॉर 3 T20 मैचेस इन श्रीलंका।
ठीक हो गया जनाब। चलें जी, बहुत शुक्रिया सर जी आपका, आप हमारे साथ जुड़ी,
थैंक यू,
आपका बहुत शुक्रिया, और तमाम सामईन का बहुत शुक्रिया। जनाब ऐसे ही जुड़े रहिए, अब आपके साथ नेक्स्ट सेगमेंट लियाकत मलिक साहब जो हैं वो लेकर अभी आ रहे हैं, तो आपने ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहना है, और वही नंबर है 416-620-1778 हमारा नंबर है। शाजी जी आपका बहुत शुक्रिया,
थैंक यू, आमिर, सी यू इंशाल्लाह टुमारो,
इंशाल्लाह। और तमाम सामईन से मुझे जो है वो आज इजाजत दीजिए, इसके बाद लियाकत मलिक साहब जो हैं वो प्रोग्राम को टेक ओवर करेंगे और आपके साथ 9 बजे तक ऐसे ही सिलसिला जारी रहेगा। तो जनाब मुझे आमिर अहमद को इस वक्त इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही, तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी, वो जिंदा रही तो फिर आपसे फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।
7769-0241
10 दिन हो गए तेन स्नेहा लाई नू, पर तू इग्नोर ही कर रहे हैं, हूं फोन इग्नोर हो जूगा, गोलियां इग्नोर नहीं होनी, आपका आप परिवार का ध्यान रखी, फिर ना कहीं भी दस्या नहीं।
जस्टिन ट्रूडो दियां सॉफ्ट ऑन क्राइम पॉलिसीज की वजह नाल एक्सटॉर्शन राइज से है, लिबरल्स ने एक्सटॉर्शन ते पेनल्टीज भी घटा दितियां हन, इस दौरान पीयर पॉलियर एक्सटॉर्शन दे अगेंस्ट बिल लेके आए सन, जस्टिन ट्रूडो ते जगमीत सिंह ने इस दे खिलाफ वोट की, हुन सिर्फ कॉमन सेंस कंजरवेटिव ही कैनेडा का माहौल ठीक कर सकते ने। ब्रॉट यू बाय पीयर पॉलियर एंड कैनेडाज कंजरवेटिव।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੀਨੂਅਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਲ ਸਟੇਟ ਐਜੈਕਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮੁਦੱਸਰ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ 2 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ $1,775 ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਰਾਜਾ ਮੁਦੱਸਰ ਨੂੰ 6472903773 ਯਾਨੀ 6472903773।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब, लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी, आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी, क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 5196220660 या quicktrucklube.com, QTL बिकॉज वी केयर।
ਸਾਡੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ।
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
ब्रैम्पटन सड़कां, फुटपाथां अते बस स्टॉप दे सर्दियां दे रख रखाव दे कॉन्ट्रैक्ट दा नवीकरण करन जा रहा है। अते इह जानना चाहुंदा है कि शहर दे निवासी इन्हां सेवावां दा भुगतान करन लई तैयार हन। परिणाम स्वरूप निवासियां दे लई टैक्सेस वध सकदे ने, पर सारियां परिवारां नूं इह सेवा दा लाभ नहीं मिल सकदा। सारे फुटपाथां नूं साफ करन लई सालाना $2.6 million दा खर्चा आउंदा है। ड्राइववे तों बर्फ साफ करन लई इस दी कीमत $19.6 million प्रति साल होवेगी। ते अपने सुझाव देण लई अज ही विजिट करो brampton.ca/engage।
आपके जहन में कुछ क्रिकेट चल रहा है? दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी आ रहे हैं आपके शहर ब्रैम्पटन में। बाबर आजम, डेविड वार्नर, क्रिस लीन, शाहीन अफरीदी, शकीबुल हसन और मजीद सुपरस्टार को देखिए एक्शन में जुलाई 25 से 11 अगस्त तक टीडी क्रिकेट अरीना ब्रैम्पटन में। बुक योर टिकट्स नाउ एट tickets.gt20.ca एंड डू नॉट मिस आउट नॉर्थ अमेरिका बिगेस्ट क्रिकेट इवेंट।
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساری ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900।
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए